नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही अहम पुस्तक है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, उसके एक खास अध्याय पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं।
जी हाँ बिल्कुल, ये पुस्तक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है
और इसका जो अध्याय है नारी श्रद्धा और श्रेष्ठता की अधिष्ठात्री, मतलब वो आधार जिस पर श्रद्धा और श्रेष्ठता टिकी हुई है।
कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माता जी का दृष्टिकोण क्या है, वो नारी को ये ऊंचा स्थान क्यों देती हैं?
हाँ, और अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत ही आप कह सकते हैं जोरदार विचार से होती है।
कौन सा विचार?
यही कि हो सकता है शारीरिक बल में पुरुष श्रेष्ठ हो, पर जहाँ आध्यात्मिक उन्नति की बात आती है,
अच्छा,
वहाँ नारी ही वरिष्ठ और विशिष्ट है, ये उनका मानना है।
ये तो वाकई एक अलग नजरिया है, मतलब आध्यात्मिक स्तर पर श्रेष्ठता।
बिल्कुल, तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं, कैसे देखती हैं वो इसे।
देखिए, वंदनीय माता जी का तर्क ये है कि नारी के स्वभाव में ही कुछ खास गुण होते हैं, जैसे करुणा।
हाँ, करुणा तो है ही,
और सिर्फ करुणा नहीं बल्कि सेवा और सौम्यता भी। वो कहती हैं कि यह गुण उसमें स्वाभाविक रूप से रचे बसे हैं, ये सिर्फ मतलब भावनाएं नहीं है।
अच्छा, तो ये जीने का तरीका है।
हाँ बिल्कुल, ये उसके जीवन जीने का एक ढंग है जो उसके जन्म से लेकर अंत तक आप कह सकते हैं सहज रूप से झलकता है,
और इसी को वो परमार्थ कहती हैं, उच्च स्तरीय परमार्थ।
जी हाँ, मतलब दूसरों की भलाई का सर्वोच्च कार्य। ये कोई बाहर से थोपा हुआ नहीं, ये अंदर से आता है, जैसे नदी बहती है ना स्वाभाविक रूप से।
हाँ बिल्कुल,
बस वैसे ही नारी का करुण होना, सेवाभावी होना, ये उसका स्वभाव है।
और इसी स्वाभाविकता के कारण वो मानती हैं कि नारी सहज ही परोपकार का मार्ग पर चलती है।
एग्जैक्टली, ये कोई कर्तव्य की तरह नहीं है कि करना ही है, ये उसके अस्तित्व का, उसके होने का हिस्सा है।
वंदनीय माका जी ने बहुत सुंदर उपमा भी दी है इसके लिए, है ना, परिवार में कल्प वृक्ष की।
जी हाँ, कल्प वृक्ष यानी वो दिव्य वृक्ष जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है।
तो वैसे ही नारी परिवार को पोषित करती है।
बिल्कुल, बचपन से ही देखिए ना, माँ का हाथ बटाना हो,
हाँ,
भाई बहनों का ध्यान रखना, यहाँ तक कि खेलकूद में भी एक शालीनता दिखती है लड़कियों में।
ये बात तो है।
वंदनीय माता जी ने इस पर भी ध्यान दिलाया कि जहाँ किशोर लड़कों में थोड़ी उद्दंडता, एक अलहड़पन सा दिखता है,
हाँ वो उम्र ही ऐसी होती है,
वहीं किशोरियों में उसी उम्र में एक संकोच भरी शालीनता आ जाती है। और ये उनके अनुसार नारी के स्वाभाविक संयम और सौम्यता का प्रमाण है, ये अंदरूनी गुण है।
सही कहा। और फिर जब विवाह होता है तो अर्धांगिनी के रूप में,
हाँ,
वो सिर्फ साथी नहीं बनती,
नहीं, वो पति की कमियों को भी पूरा करती है, ऐसा वो मानती है, एक तरह से पूरक बनती है।
और अन्नपूर्णा का रूप, मतलब अन्न देने वाली देवी की तरह। जी,
घर को सिर्फ भोजन से नहीं बल्कि खुशहाली से, संपन्नता से भरती है।
हाँ,
आप देखिए बच्चों से लेकर घर के बड़े बुजुर्गों तक,
हाँ,
सबको उसकी आंचल की छाया मिलती है, एक सुरक्षा, एक पोषण का भाव।
तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मतलब ये हुआ कि परिवार का जो पूरा ताना बाना है,
हाँ,
वो नारी के श्रम, उसके स्नेह, उसके सहयोग पर ही टिका है।
बिल्कुल, और इसी पोषण से, इसी देखभाल से समाज को महान पुरुष मिलते हैं जिन्हें वंदनीय माता जी ने नर रत्न कहा है।
नर रत्न, मनुष्यों में रत्न।
जी, तो ये दिखाता है कि परिवार और समाज दोनों की नींव में नारी की भूमिका कितनी केंद्रीय है।
पर अक्सर ये भूमिका, ये स्वाभाविक गुण, समाज इन्हें अनदेखा कर देता है ना।
हाँ, ये विडंबना है, और यहीं पर अध्याय का जो सबसे अहम, जो अंतिम विचार है वो सामने आता है।
कौन सा?
वंदनीय माता जी कहती हैं कि अगर समाज मातृशक्ति को समझ ले।
मातृशक्ति मतलब नारी की वो आंतरिक शक्ति, सृजन और पोषण वाली।
हाँ भाई, अगर समाज उसकी गरिमा को पहचाने, उसे सम्मान दे,
तो
देवी स्वरूप नारी इस धरती को स्वर्ग बना सकती है।
वाह, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हुई। नारी में सिर्फ परिवार चलाने की नहीं बल्कि दुनिया बदलने की क्षमता है।
उनके अनुसार तो यही है, बस शर्त ये है कि उसकी इस शक्ति को पहचाना जाए, उसे पोषित किया जाए, उसे सही दिशा मिले।
ये सिर्फ कोई भावुक अपील नहीं लगती?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से सामाजिक बदलाव की एक गहरी संभावना की ओर इशारा है। वो नारी को सिर्फ दया या समानता के नजरिए से नहीं देख रही,
तो फिर
वो उसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही हैं जो सक्रिय रूप से, पॉजिटिव तरीके से दुनिया को बदल सकती है।
तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि ये अध्याय नारी को आध्यात्मिक रूप से पुरुष से भी आप कह सकते हैं विशिष्ट मानता है।
जी हाँ,
और उसकी जो स्वाभाविक करुणा है, सेवा है, पोषण की क्षमता है, वही उसे श्रद्धा और श्रेष्ठता का पात्र बनाती है
और वही परिवार और समाज दोनों की नींव है।
सही।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।
हाँ जरूर।
कि अगर वंदनीय माताजी ने जो ये नारी के स्वाभाविक गुण बताए हैं और ये जो मातृशक्ति की बात की है, अगर समाज इसे सच में स्वीकार कर ले, मान ले, महत्व दे, तो हमारे सामूहिक जीवन पर, हमारे कल्याण पर इसका असर कैसा होगा, कितना गहरा हो सकता है।
ये वाकई सोचने वाली बात है।
हाँ, इस पर विचार करना चाहिए।